तो मैं प्रभु जी का संक्षिप्त परिचय आप सभी को दूंगा। वैसे आप प्रभु जी से पहले भी मिल चुके हैं, प्रभु जी ने पहले भी हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर आकर के नरसिंह देव की कथा भी सुनाई थी हमें, और पहले कुछ राम कथा भी सुनाई थी। तो प्रभु जी का संग हमें पहले भी प्राप्त हो चुका है, और यहाँ पर आज ग्रेटर नोएडा के द्वारा जो प्रचार कार्य होता है उससे जुड़े हुए भक्तों का भी हार्दिक स्वागत करेंगे, जो कि श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी ऑनलाइन प्रोग्राम लेते हैं, उनसे जुड़े हुए जो भक्त हैं उनका भी आज हम स्वागत करेंगे। और 3 दिवसीय कथा में ये सारे भक्त हम सभी लोग मिल करके नित्यानंद प्रभु की कथाओं को सुन करके उनके चरित्र का गुणगान करेंगे। तो मैं संक्षिप्त में अतुल कृष्ण प्रभु जी का एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। अतुल कृष्ण प्रभु जी का वैसे जन्म न्यू दिल्ली में हुआ, और उन्होंने अपनी जो स्कूलिंग है, कॉलेज एजुकेशन है, सब मुंबई में पूर्ण की, और फिर उन्होंने इस्कॉन मीरा रोड ज्वाइन किया था करीब 1997 वर्ष के आसपास, 97-98 के एरा में, क्योंकि वो उनके हृदय में एक बहुत तीव्र इच्छा थी कि वो जनसाधारण में भगवद गीता की शिक्षाओं को प्रचार करें, प्रसार करें। इसके लिए वो पूर्ण समर्पित जीवन उन्होंने वहां पर ज्वाइन किया, और कुछ ही सालों बाद वो वहां से बेलगांव कर्नाटक में, ये एक फार्म कम्युनिटी है इस्कॉन की, वहां पर चले गए, और वहां पर रह करके करीब करीब 15 सालों तक प्रभु जी ने बेलगांव के सेंटर की देखरेख की। और फिर उन्होंने वहां से 2014 में एक नया प्रोजेक्ट, बेलगांव मंदिर से ही, बेलगांव फार्म से ही जुड़ा हुआ एक नया प्रोजेक्ट कारवार में था, तो कारवार भी कर्नाटक में एक प्लेस है, तो वहां पर प्रभु जी ने 6 सालों तक ये सेवा की। तो लगभग 2020 तक वो कारवार में जुड़े रहे, और फिर इस्कॉन ग्रेटर नोएडा न्यू दिल्ली में प्रभु जी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, तो वो यहाँ के सेंटर मैनेजर के रूप में प्रभु जी अभी पूर्णतया स्थित हैं। और पिछले 23 वर्षों में प्रभु जी ने गीता भागवत शास्त्रों का प्रचार किया है, तो प्रभु जी ने अपनी भक्ति शास्त्री कंप्लीट की है, भक्ति वैभव कोर्स कंप्लीट किया है, भक्ति वेदांत डिग्री भी उनकी कंप्लीट होने वाली है, कई सारे शास्त्री कोर्सेस प्रभु जी सिखाते हैं, और उन्होंने इस्कॉन का एक जोनल सुपरवाइजर कोर्स होता है जीबीसी कॉलेज के द्वारा संचालित, वो भी किया है, आईलीड्स कोर्स भी किया है, और उस दौरान मुझे भी संग मिला था प्रभु जी का आईलीड्स कोर्स के दौरान, जब 2 सेशंस हुए थे तलासरी में और कानपुर में। तो वैसे तो मुझे प्रभु जी का परिचय उन दिनों से है, प्रारंभिक दिनों से, मीरा रोड के समय से, लेकिन आईलीड्स में हम लोग फिर से कुछ समय मिले थे, और वर्तमान में पिछले 4 सालों से, लगभग 4-5 सालों से अतुल कृष्ण प्रभु जी के साथ सक्रिय रूप से इस्कॉन इंडिया यूथ काउंसिल में सेवा करने का भी सौभाग्य मुझे मिला। तो प्रभु जी भक्ति शास्त्र के टीचर हैं, भक्ति वैभव के टीचर हैं, आईडीसी कोर्सेस पढ़ाते हैं, और जाने जाते हैं अपने सहजता और सौम्यता से शास्त्रों की चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल प्रभु जी इस्कॉन ग्रेटर नोएडा के सेंटर इंचार्ज हैं, और इस्कॉन इंडिया यूथ काउंसिल के कोर टीम मेंबर हैं, टीचर हैं, काउंसलर हैं, और भारत में ही नहीं बाहर भी प्रचार करने के लिए भ्रमण करते हैं, और कई सारे अपने जो सेशन से उन्होंने कई टॉपिक्स, कई कोर्सेज बनाए हैं माइंड कंट्रोल के ऊपर, लाइफ मैनेजमेंट के ऊपर, तो कॉन्ग्रीगेशन डिवोटीज को, कॉर्पोरेट डिवोटीज को, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में प्रभु जी प्रचार करते हैं। भारत में विशेषतया मुंबई, उदयपुर, भिलवाड़ा, सूरत, वृंदावन में उनकी रेगुलर विजिट्स होती है। अभी भी कुछ समय पहले प्रभु जी भिलवाड़ा थे, और वैसे उन विदेशों में प्रभु जी यूके में जाते हैं, केन्या, तंजानिया, मलावी, बोत्सवाना, जाम्बिया, बहरीन में जा करके वहाँ के भक्तों को ये सारे कोर्सेज देते हैं, और उनसे उनको शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। तो इस तरीके से आज हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी हर बार, जैसे हर वर्ष में एक बार तो आ जाते हैं 2-3-4 दिनों की कथा देने के लिए, तो इस बार मौका प्राप्त हुआ है। नित्यानंद त्रयोदशी का सुंदर जो पर्व है उसके अंतर्गत ये 3 दिवसीय कथा के लिए, मैंने तो प्रभु जी से रिक्वेस्ट किया था कि आप नित्यानंद त्रयोदशी का भी लेक्चर आप ही दीजिए, लेकिन प्रभु जी को टेम्पल में लेक्चर देना है। पर फिर इसके लिए कथा जो है 19th to 21st ऑर्गेनाइज की गई है, 7:30 बजे से चालू होगी। तो आइए हम लोग हृदय से अतुल कृष्ण प्रभु जी का यहाँ पर स्वागत करें डीएमपी के भक्तों के द्वारा, और सारे ही जितने बाकी भी भक्त जुड़े हैं, लेट अस ऑल वेलकम प्रभु जी बाय अनम्यूटिंग एंड लाउडली चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र वंस।
हरे
कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम हरे राम राम
हरे कृष्णा हरे कृष्णा
राम राम
कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे।
वेलकम प्रभु जी, वेलकम टू डेली मॉर्निंग प्रोग्राम। थैंक यू फॉर काइंडली एक्सेप्टिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड स्पीकिंग ऑन लॉर्ड नित्यानंद ग्लोरीज।
Thank you, Prabhu, for inviting me. Grateful to you.
मैं सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो जो संभव है तो आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, ताकि एक बार प्रभु जी सबको देख सकें, और आप सेशन के दौरान भी अगर वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑल डिवोटीज कैन प्लीज ऑन देयर वीडियोस।
पहले आपने कहा संभव है तो वीडियो ऑन करें। संभव क्यों, ऐसे कहना चाहिए कि सब लोग वीडियो ऑन करें। संभव क्या है?
एवरीवन प्लीज ऑन योर वीडियोस।
ओके, थैंक यू। अभी
यस प्रभुजी,
अभी ऐसा लगेगा कि हम कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा लगता है कि कैमरे को रिकॉर्ड कर रहे हैं। थैंक यू। शुड आई स्टार्ट रविंद्र चैतन्य प्रभु?
यस प्रभुजी, यस प्रभु।
थैंक यू। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादां सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनितिनामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। नित्यानंद त्रयोदशी के इस पावन पर्व पर अब हम लोग नित्यानंद प्रभु की कथा को कुछ समय तक सुनेंगे। प्रयास करेंगे इन 3 दिनों में नित्यानंद प्रभु को तत्वतः जानने का, अर्थात क्या है, कौन है नित्यानंद प्रभु, उनके तत्व को समझना, साथ साथ नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव और उनकी लीलाओं को श्रवण का प्रयास करेंगे, और कैसे नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में सहायता करते हैं, क्या उनका योगदान है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो ये हम इन 3 दिनों में नित्यानंद प्रभु के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज प्रारंभ कर रहे हैं और इसीलिए उनको प्रणाम करेंगे। ये प्रणाम मंत्र दरअसल दोनों के लिए है, चैतन्य महाप्रभु के लिए भी है और नित्यानंद प्रभु के लिए भी है। तो तो इसलिए इस प्रणाम मंत्र को कहेंगे और फिर प्रारंभ करेंगे। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो, तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, इनके अजानुलंबित भुजो, जो भुजाएं हैं बहुत लंबी हैं, कनकावदातो, और रंग स्वर्ण के समान है, कनक के समान है। संकीर्तनय कपितरो, संकीर्तन आंदोलन जिसमें हम सब हैं, इसके वो पितरो, पितरो मतलब प्रारंभ करने वाले हैं। और कमलायताक्षो, आंखें कैसी हैं उनकी, कमल के समान हैं। विश्वम भरो द्विजवरो युग धर्म पालो, तो कौन है वो विश्वम भर, विश्व का भरण पोषण करने वाले। द्विजवरो, जितने भी द्विज हैं, ब्राह्मण हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं। युग धर्म पालो, युग धर्म का पालन करते हैं, रक्षा करते हैं। वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो, तो वैसे जो करुणा के अवतार हैं उनका वंदन जगत करता है। वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो, तो वे प्रसन्नता आनंद लाते हैं पूरे जगत में, और इसीलिए करुणा के अवतार हैं। श्री प्रभुपाद का एक बहुत ही प्रिय भजन है, परम करुणा बहु दुईजना निताई गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। परम करुणा बहु दुईजना, ये दो जन हैं नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु, तो परम करुणा है। बहु दुईजना निताय गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। सारे अवतारों के सार हैं, शिरोमणि हैं, प्रमुख हैं, और क्या लेकर आए हैं मार्ग भक्ति का, केवल आनंद कंद। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु हैं। हम लोग जब इस समय सब भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति करने का उद्देश्य क्या है, या जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? स्वाभाविक है कृष्ण प्रेम, भगवान के प्रेम को हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये जो कृष्ण प्रेम है, ये कैसे प्राप्त हो सकता है? बहुत हम लोग चर्चा करते हैं कृष्ण प्रेम चाहिए, जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम, कैसे प्राप्त होता है? कोई कह सकता है कि आंखों में आंसू ले आए और सड़कों पर ऐसे ही घूमे, हा कृष्ण कृष्ण प्रेम आएगा? नहीं, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है जब गुरु और साधुओं की कृपा होती है। तो कृष्ण प्रेम एक ही मार्ग से संभव है, और वो है गुरु और साधुओं की कृपा, अन्य कोई मार्ग नहीं है। और जब हम बात करते हैं गुरु और साधुओं की कृपा, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ऐसे सभी लोग, गुरु कौन है? दो प्रकार के गुरु हैं। वैसे तो गुरुओं के कई प्रकार हैं, जैसे हम लोग कहते हैं शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु इत्यादि। प्रमुखतः दो प्रकार के गुरु हैं, एक समष्टि गुरु और दूसरे व्यष्टि गुरु। समष्टि गुरु मतलब जो सारे गुरुओं का मिला जुला संयुक्त भाग है, समष्टि। और दूसरे होते व्यष्टि। व्यष्टि मतलब जो एक एक गुरु है व्यक्तिगत रूप में। तो जितने भी गुरु हैं इस जगत में, परंपराओं में जितने भी गुरु हैं, उनको व्यष्टि गुरु कहा जाता है। और वे सब प्रतिनिधि हैं किसके? नित्यानंद प्रभु के, जिन्हें समष्टि गुरु कहा जाता है। तो नित्यानंद प्रभु सारे गुरुओं के गुरु कहे जा सकते हैं, या सारे गुरुओं का मिला हुआ, जितने भी गुरु हैं उनको अगर सबको मिला दिया जाए तो एक बनेंगे, वो है नित्यानंद प्रभु। तो इसलिए कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है साधु और गुरु की कृपा से। और गुरु कौन है, गुरुओं के प्रमुख कौन है? नित्यानंद प्रभु। तो गुरु दरअसल कहना चाहिए कि दिव्यता के मूर्तिमान स्वरूप होते हैं, और नित्यानंद प्रभु वो हैं। वे भगवान हैं लेकिन सेवक भगवान हैं, ये सेवा करते हैं। दो तरह के भगवान होते हैं, एक सेव्य भगवान और दूसरे सेवक भगवान। तो नित्यानंद प्रभु ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये दिव्यता के मूर्तिमान स्वरूप हैं, या कहना चाहिए कि ये जीवों के, सारे जीवों के ये स्रोत हैं नित्यानंद प्रभु। और वे जीवों को भगवान की सेवा में लगाने का कार्य करते हैं। एक चीज हमें जान लेनी चाहिए कि भगवान परम सत्य है, पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्तो पूर्ण शुद्धो अभिन्नत्वम नाम नामिनः, पूर्ण शुद्ध है भगवान। तो इसलिए उनके सेवा का माध्यम कोई साधारण जीव नहीं हो सकता। इस चीज को हमें समझना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, परम सत्य की सेवा करना चाहते हैं, तो ये जान लीजिए कि एक माध्यम तो चाहिए, क्योंकि हम शुद्ध नहीं हैं। तो माध्यम क्या होगा? कोई जीव माध्यम नहीं हो सकता भगवान की सेवा का।
इसके में सकल भी देख
उनकी
रहे
आवाज सुनोगे ना तो बहुत बढ़िया बात है। ये विदेशों में हर जगह देते हैं
थोड़ा आवाज
कि
जिनकी आ रही है कृपया बंद कीजिए। ये इसके होस्ट कौन है, कृपया सबको म्यूट कर दीजिए, ताकि लोग अपने आप को अनम्यूट ना कर पाए। एंड आप सबसे भी विनती है कि अपने अपने जो भी कनेक्शन है उसको म्यूट पे रखें, नहीं तो आपके घरों की बातें सबको सुनाई दे जाएंगी, अच्छा नहीं होगा। ओके, क्या चर्चा कर रहे थे हम लोग? देखिए ऐसा होता है, कहाँ हम दिव्यता में थे, आप खींच कर अपने घर में, अपने किचन में ले आते हैं
हरे कृष्णा
हमें।
प्रभु जी, आप बोल रहे थे परम सत्य की सेवा का माध्यम कोई जीव नहीं हो सकता भगवान के सिवा।
थैंक यू, धन्यवाद माता जी। और हमारी विनती भी है, जो भी होस्ट हैं कृपया सभी को म्यूट कर दीजिए। उसमें एक ऑप्शन होता है कि वे लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाए, तो कृपया उसको कर दीजिए। जब क्वेश्चन आंसर होगा उस समय हम लोग अनम्यूट करेंगे। ओके, सो ओके, थैंक यू। आई थिंक अभी सबको म्यूट कर
कर
दिया।
दें।
सो ओके, आवाज आ रही है आशा कुमारी। सो कोई भी जो साधारण जीव है वो भगवान की सेवा का माध्यम नहीं हो सकता, अर्थात किसी और जीव को वो भगवान की सेवा का माध्यम नहीं बना सकता, माध्यम नहीं बन सकता। इसीलिए नित्यानंद प्रभु ये जीवों को सेवा में लगाते हैं। लेकिन कैसे लगाते हैं? नित्यानंद प्रभु सीधे नहीं लगाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात हमें समझनी चाहिए। क्या आपने हमें भी म्यूट कर दिया? होस्ट कौन है इसके? वे तो म्यूट हो अनम्यूट होकर बोल सकते हैं।
हरे कृष्ण माता जी, सेटिंग चेंज कर दीजिए प्लीज।
या कैन आई कंटिन्यू नाउ, बिकॉज बार बार वो म्यूट हो रहा है बीच बीच में।
नूपुर माता जी, म्यूट एवरीवन,
मे बी यू कैन मेक मी को होस्ट
हाउ
सो
टू
दैट।
म्यूट देम, अनम्यूट देम।
हरे कृष्णा। ओके, आई थिंक अभी बिना बाधा के हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। समय काफी हो रहा है, ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं, और क्षमा चाहते हैं अभी कि आज की कथा प्रारंभ भी नहीं हो पा रही है। सो नित्यानंद प्रभु की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु किस प्रकार से सेवा में लगाते हैं जीवों को? सीधे लगाते हैं, क्योंकि अगर सीधे लगाएं तो चर्चा आती है, प्रश्न आता है, फिर श्रीमती राधा रानी क्या करती हैं? क्योंकि हम लोग तो प्रार्थना करते हैं हरे कृष्णा मतलब हे श्रीमती राधा रानी, हमें भगवान की सेवा में लगाइए। और यहाँ अभी अभी हमने सुना कि नित्यानंद प्रभु लगाते हैं, तो कैसे ये दोनों का हो? नित्यानंद प्रभु सीधे सेवा में नहीं लगाते, श्रीमती राधा रानी जो भगवान के अंतरंग सेवक जो हैं, उनकी प्रमुख हैं, वो सेवा में लगाती हैं। लेकिन श्रीमती राधा रानी उन्हीं को स्वीकार करती हैं सेवा के लिए जिनको नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त होती है, या जिन्हें नित्यानंद प्रभु समझते हैं कि ये सही है सेवा के लिए, ये योग्य हैं सेवा के लिए, इनको जाना चाहिए। या कहना चाहिए कि जब नित्यानंद प्रभु का रिकमेंडेशन मिलता है तब श्रीमती राधा रानी सेवा में लगाती। तो लगाती श्रीमती राधा रानी हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु के द्वारा जब हमें एक अच्छा सा लेटर मिल जाता है, तो इसलिए हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा बहुत आवश्यक है। वैसे एक दृष्टि से चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु में कोई भेद नहीं है, जैसे कृष्ण और बलराम जी में कोई भेद नहीं है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहर द्वितीय देह श्री बलराम, एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काया, आद्य काया व्यूह कृष्ण लीला रसहाय। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझाते हैं कि कृष्ण शाश्वत रूप से गोलोक वृंदावन में आनंद ले रहे हैं अपने असंख्य संगियों के साथ, और बलराम जी क्या हैं? बलराम जी सारे जितने भी आध्यात्मिक या भौतिक प्राकट्य हैं उनके स्रोत हैं। भगवान की आध्यात्मिक शक्ति 3 भागों में बटी है, संधिनी, संवित संधिनी और अलादिनी। अलादिनी शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप या कहना चाहिए अधिष्ठाता देवी श्रीमती राधा रानी है, और संधिनी जो धारण करती है उसके बलराम जी हैं। तो बलराम जी स्रोत हैं सब चीजों के, जितने भी नारायण रूप निकलते हैं, जितने भी विष्णु विस्तार हैं, ये सब बलराम जी से आते हैं। ये भौतिक जगत भी बलराम जी से आता है, बलराम जी का विस्तार होते होते फिर आगे भौतिक जगत प्रकट होता है। और वही बलराम आते हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में, जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। लेकिन थोड़ा सा भेद है बलराम जी और नित्यानंद प्रभु में। बलराम जी बड़े प्रसिद्ध हैं क्रोध करने के लिए, दंड देने के लिए, शत्रुओं का दमन करने के लिए, बहुत सारे असुरों को मारने के लिए, और इतना ही नहीं पूरा हस्तिनापुर शहर को यमुना में डुबो देने के लिए तैयार थे, खींच लिया था उन्होंने। या फिर इवन ब्राह्मणों को मार दिया, रोमहर्षण सूत जो कथा कह रहे थे तो उनको भी मार डाला। बलराम जी एकदम क्रोध के प्राकट्य। नित्यानंद प्रभु, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, वो कभी क्रोध ही नहीं करते। अक्रोध कृपा कहना चाहिए कि कृपा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। और सबसे बड़ी कृपा क्या है उनकी? क्या क्रोध नहीं करना कोई कृपा है? नित्यानंद प्रभु को क्यों कहा गया कि ये कृपा के मूर्तिमान स्वरूप हैं? क्योंकि वो कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदान कर सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिन लोगों को नित्यानंद प्रभु के प्रति प्रेम, आकर्षण या आदर उत्पन्न हो गया है, उन्हें मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न हो सकता है। महाप्रभु कहते हैं कि जितने भी देवता हैं, शिव जी, ब्रह्मा इत्यादि सारे, वे नित्यानंद प्रभु को अपनी पूजा इत्यादि अर्पण करते हैं। और अगर कोई सोचता है नित्यानंद प्रभु के बारे में, जरा सा भी गलत सोचता है, निंदा करता है, कोई भी क्यों ना हो, पतन निश्चित है। वे तो इतना भी कहते हैं कि अगर ऐसा व्यक्ति अपने आप को मेरा भक्त भी कहता है तो मेरा भक्त नहीं। इतने प्रिय हैं नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु को। तो उनसे ज्यादा कहना चाहिए प्रिय कोई नहीं। जो भी चैतन्य महाप्रभु को अगर संतुष्ट करना है तो वो कब संतुष्ट होते हैं? उस व्यक्ति से संतुष्ट होते हैं जो नित्यानंद प्रभु के गुणगान को, उनकी लीलाओं को, उनके विषय में जो सुनता है, चैतन्य महाप्रभु उससे संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम नित्यानंद प्रभु के विषय में अधिक से अधिक श्रवण करें। जैसे द्विज, विप्र, ब्राह्मण, ये अलग-अलग नाम हैं लेकिन एक ही व्यक्ति के हो सकते हैं। इसी तरह नित्यानंद, अनंत, बलदेव, ये अलग-अलग नाम हैं लेकिन एक ही भगवान है। तो इस तरह से हमें इनके विषय में ज्ञान जरूर लेना चाहिए। अपने अंदर ज्ञान के आधार पर गुणों को उत्पन्न करना चाहिए। एक बड़ी सुंदर बात कही गई है कि हम सब परिवार चाहते हैं, है ना? हम माता, पिता, भाई, बहन, मित्र, पत्नी, बच्चे, इन सब की कामना है, इन सब से एक परिवार बनता है। तो अगर हमें कृष्ण को पाने की इच्छा है तो कैसा परिवार होना चाहिए हमारा? बहुत सुंदर बात कही गई है। सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता दया सखी, शांति ही पत्नी क्षमा पुत्र षड्मी मम बांधव। मेरे बांधव कौन है, मेरा परिवार कौन है? सत्यम माता, मेरा परिवार क्या है? मेरी माता कौन है? सत्य। देखिए, शास्त्रों को माता का स्थान दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि शास्त्र क्या हैं? प्रभुपाद समझाते हैं माता के समान हैं। जो ये दिखलाते हैं कि पिता कौन है, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर हमें अपने पिता के बारे में जानना है, ढूंढना है, तो कोई वैज्ञानिक शोध से हम ढूंढ नहीं सकते हैं। सरल विधि क्या है? माता बता देती है पिता है, स्वीकार कर लिए, बस माता को पता है। तो जो श्रुति है, श्रुति, स्मृति, पुराण आदि, ये जो शास्त्र हैं ये माता के समान हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें दिखलाते हैं पिता कौन है, परम सत्य कौन है। तो इसलिए अगर हमें परिवार बनाना है तो सत्यम माता, हमें सत्य को माता बनाना चाहिए, सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। ये जगत पूरा झूठा जगत है जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं, और इससे बाहर निकलने के लिए सत्य की आवश्यकता है। झूठा क्यों है? क्योंकि जितने भी संबंध इसमें हैं झूठे हैं, जितने भी भोग देने की सुविधाएं इसमें हैं झूठी हैं, इसीलिए माया कहा जाता है। तो माया से परे जाना है। कहाँ है माया? कहाँ तक है? हमारे घर में है, समाज में है, राष्ट्र में है। अब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वमाया जग, अब्रह्मस्तंभ पर्यंतम, ब्रह्मा जी के लोग से लेकर, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक, सर्वमायामयम जगत। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर्नामेव केवलम। तो उस सत्य की ओर हमें जाना है, इसीलिए सत्यम माता पिता ज्ञानम। हमारे पिता कौन हो? हमारी माता हो सत्य, और पिता कौन हो? ज्ञान। ज्ञान को पिता बनाइए। ज्ञान अर्थात शुष्क ज्ञान नहीं, ज्ञान अर्थात केवल कोई ऐसा इस भौतिक जगत का ज्ञान नहीं, वो तो अविद्या है। तीन तीन शब्द हम जान सकते हैं, पराविद्या, अपराविद्या और अविद्या। कई बार हम लोग पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते थे कि इस यूनिवर्सिटीज में जो सिखाया जाता है ये अविद्या है। तो कोई सोच सकता है कैसे अविद्या है? इतना सब कुछ हम सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कैसे लोगों को ठीक किया जाता है, कैसे मशीन ठीक की जाती है, हम इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, ये सब क्या अविद्या है? तो जानिए कि क्या है। एक होता है पराविद्या, अर्थात पर जो जगत है, इस जगत के परे जो जगत है, परस्तस्मात् उभावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। तो जो पर जगत है उसका ज्ञान पर विद्या, परा विद्या कहलाता है। भगवान को जानना, भगवान के धाम को जानना, उनकी भक्ति के मार्ग को जानना, परा विद्या। दूसरा, ये भौतिक जगत का ज्ञान, देखिए भगवद गीता में कितना ज्ञान दिया है भौतिक जगत के विषय में। भूमिरापो नलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भौतिक जगत का ज्ञान ये अपरा विद्या कहलाता है। तो परा अपरा, अविद्या क्या है? वही अपरा विद्या अर्थात वो भौतिक जगत का ज्ञान जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं वो अविद्या हो जाता है। और यही कारण है श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि यूनिवर्सिटीज में जो सिखाया जा रहा है वो अविद्या है। क्यों? क्योंकि वो केवल इसलिए है कि आप अपनी इंद्रिय तृप्ति कैसे कर सको। विद्या ये जो ज्ञान दिया जा रहा है कॉलेजेस में, स्कूल में, केवल ये बताने के लिए कि आप अपना पेट कैसे भर सकते हो। और देखिए आजकल यही है, आजकल विद्यार्थी कौन सा कॉलेज चूज करते हैं? वो कॉलेज चूज नहीं करते हैं कि जहां पर बड़े अच्छे टीचर्स हैं, पढ़ाने वाले अच्छे हैं। वो देखते हैं कि प्लेसमेंट कैसा है, मतलब पढ़ाई करके नौकरी कहाँ मिलेगी, वो उद्देश्य है। इसीलिए ऐसे कॉलेज को चुना जाता है जिसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड 100% है, बहुत अच्छा, सबको नौकरी पे लगा दिया, सबको नौकर बना दिया, बड़ा अच्छा कॉलेज है। अविद्या। तो हमें कौन सी, हमें किसको पिता बनाना है? ज्ञान को। कौन सा ज्ञान? जो भक्ति शास्त्रों में है। शास्त्र में भी हमारे अलग अलग शास्त्र हैं, अर्थशास्त्र है, धर्म शास्त्र है, ज्ञान शास्त्र है और भक्ति शास्त्र है। भक्ति के ज्ञान को पिता बनाइए। पिता का क्या कार्य होता है? पिता किसे कहते हैं? जो रक्षा करता, एक लक्षण पिता का दिया गया है, रक्षक, रक्षा करता है। तो ज्ञान हमारी रक्षा कर सकता है, और कोई रक्षा नहीं करेगा। ये ज्ञान कि कृष्ण ही भगवान है हमारी रक्षा कर सकता है, ये ज्ञान कि भक्ति के माध्यम से उनको पाना जीवन का उद्देश्य है हमारी रक्षा कर सकता है, ये ज्ञान कि वैष्णवों की कृपा पर हमारा जीवन आश्रित है हमारी रक्षा कर सकता है, ये ज्ञान कि हम दास दास दासानुदास हैं, और इस भाव में रहकर अपने अहंकार को त्याग कर जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं, वैष्णवों की सेवा में लगते हैं, ये ज्ञान। इसीलिए ऐसे ज्ञान की के द्वारा हमारी रक्षा होती है, इसीलिए ज्ञान को पिता बनाइए। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता। तो हमारा भाई कौन हो? भ्राता, धर्म, ज्ञान पर आधारित धर्म। भाई कहाँ से आता है? भाई आता है पिता से, बहुत सरल है। तो जिस पिता से हम आए हैं उसी पिता से भाई आता है, जिनसे हम आए हैं श्री कृष्ण के हम अंश हैं, उन्हीं से धर्म आता है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म कोई बना नहीं सकता, ये जान लीजिए। किसी भी साधु ने धर्म नहीं बनाया और बना भी नहीं सकता। साधुओं का कार्य धर्म की रचना करना नहीं है, साधुओं का कार्य धर्म को फैलाना है। धर्म की स्थापना, धर्म की रचना भगवान करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, वो भगवान करते हैं, लेकिन हम जो साधु हैं वो क्या करते हैं? उस धर्म का प्रचार। तो इसीलिए जहां से हम आए हैं वहीं से भ्राता आए हैं हमारे, और वो है धर्म। तो ऐसे धर्म को भाई बनाइए, अपना प्रिय बनाइए। कौन सा धर्म? जो ज्ञान पर आधारित है, भावनाओं पर नहीं, भावुकता पर नहीं। सच्चा धर्म क्या है? सच्चा धर्म है जो ज्ञान पर आधारित हो, जिनमें झूठी भावनाओं का कोई स्थान ना हो, लेकिन भावों का स्थान हो। हम भावनाओं में बहकर ज्ञान से परे ना जाएं, लेकिन ज्ञान की नाव में बैठकर भाव तक चले जाएं। तो ये हमारे लिए आवश्यक है। इसीलिए धर्मो भ्राता, जीवन धर्म के आधार पर होना चाहिए। और फिर आगे हमारे मित्र कौन हो? दया सखी। दया ये वैष्णवों का महत्वपूर्ण गुण है, करुणा, दया क्यों है? क्योंकि कृष्ण का गुण है। वैष्णवों के अंदर ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जो कृष्ण में नहीं है। कृष्ण में करुणा है, वैष्णवों में करुणा है। तो इसीलिए करुणा या दया को अपना मित्र बनाइए, सखी बनाइए। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखी शांति ही पत्नी। तो अब माता हो गए, पिता हो गए, भाई हो गए, मित्र हो गए, पत्नी चाहिए और पुत्र चाहिए, दो ही रह गए हैं। तो पत्नी बनाइए शांति, शांति को, अर्थात संतुष्टि या शांति को जीवन का आधार होना चाहिए। शांति को कई तरह से समझा जाता है, इंद्रियों को वश में करना भी शांति है, जीवन में संतुष्ट रहना ही शांति है। तो उसको अपनी पत्नी बनाइए। और क्षमा पुत्र, संतान चाहिए तो क्षमा। क्षमा का अर्थ होता है एक दृष्टि से क्षमा करना और दूसरी दृष्टि से सहनशीलता को बढ़ाना। तो क्षमा पुत्र, षड्मी मम बांधव, ये छह जो हैं ये मेरे बांधव हैं, ये मेरा परिवार है। तो ऐसा परिवार जिसकी कामना हमें करनी चाहिए ज्ञान और सत्य पर आधारित, और तब हम जाकर ये समझ पाएंगे कि कैसे ये जिस परिवार, जिस समाज के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, इसके परे भी एक शाश्वत रूप से एक समाज है, एक परिवार है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि जिस दिन हम वापस जाएंगे भगवान के धाम, भगवान हमारा हाथ पकड़ कर लेकर जाएंगे हमें और दिखलाएंगे, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारी माता है, ये तुम्हारी गाय हैं, सब तैयार बैठे हैं। हम ही मूर्खों ने एक मंत्र ले लिया है, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां, बस कुछ पता नहीं। इसीलिए ऐसे स्थान की कामना, ऐसे परिवार की कामना हमें करनी चाहिए, और वो संभव है जब हम नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेते हैं। नित्यानंद प्रभु जिस दिन से प्रकट हुए, उनके जन्म की कथा इत्यादि तो नित्यानंद त्रयोदशी पे होगी, लेकिन जिस दिन से वो प्रकट हुए, बहुत सुंदर वर्णन वृंदावन दास ठाकुर उनके प्राकट्य का करते हैं। राधा देश नाम एक चक्र ग्राम, हडाई पंडित घरे, शुभ माघमासी शुक्ल त्रयोदशी, जन मिला हल धर। तो वे समझाते हैं कि जन्म हुआ तो जिस दिन से, जब से वो प्रकट हुए, जितना भी वो स्थान था, राधा देश उसको कहा जाता है, एक चक्र ग्राम राधा देश नाम, तो वहां न तो गरीबी रही, न सूखा पड़ा, ना और भी किसी तरह के कष्ट हुए, सब गायब हो गए। श्री नित्यानंद प्रभु स्वयं पूजा किया करते थे मौरेश्वर, एक एक चक्र से थोड़ी सी दूर पर विग्रह है मौरेश्वर। तो नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलराम जी हैं, वो इनकी पूजा किया करते थे। नित्यानंद प्रभु ने बचपन से, कैसा उनका बचपन बीता, जन्म की चर्चा तो नित्यानंद त्रयोदशी पे होगी, लेकिन कैसा उनका बचपन बीता इसको हम लोग थोड़ा सा समझें, जिससे हम कुछ सीख सकें। नित्यानंद प्रभु अपने मित्रों के साथ कोई साधारण खेल, कोई साधारण नाटक इत्यादि नहीं करते थे, सदैव केवल कृष्ण की लीलाओं को वो खेला करते थे, कृष्ण की लीलाओं को प्रकट किया करते थे। तो बहुत बहुत सी लीलाएं करते थे वो, और उनके मित्र आ जाते थे कि सब है, ये देवता है सारे, और एक उनमें से ऐसे करता था कि जैसे भूमि आई है और वो सारे देवताओं को प्रार्थना कर रही है, रक्षा करो रक्षा करो, कंस बहुत कष्ट दे रहा है। नित्यानंद प्रभु ऐसी ऐसी बातें उसमें बताया करते थे जो किसी को पता नहीं होती थी, लोग सोचते थे इसको कैसे पता अब उनको नहीं पता होगी तो किसको पता होगी। तो ऐसी बहुत सी लीलाएं, वसुदेव और देवकी के विवाह की लीला, एक रात सभी लोग सो गए, फिर एक जेल बनाया उन्होंने, फिर जेल में से कृष्ण का जन्म हुआ, उनको लेकर गोकुल गए, पूतना का वध, शकटासुर का वध, तो ये सारी चीजें वे किया करते थे। कभी कभी उन्होंने पत्तों से एक सांप बना दिया, हाँ, और उसको पानी में ले गए, और फिर पानी में कालिया का वध कर रहे हैं, गोवर्धन लीला कर रहे हैं, ऐसे लीलाएं किया करते थे। एक दिन नित्यानंद प्रभु वामन का रूप ले लिए, उन्होंने वामन के जैसे पहने, और फिर बलि महाराज को जाकर धोखा दे रहे हैं, ऐसे बहुत सारे। और रामचंद्र जी की लीलाओं में तो बड़ा विशेष रुचि थी, तो एक समय नित्यानंद प्रभु ने सबको कहा कि ठीक है, ऐसे ऐसे हम लोग अभी रामचंद्र जी का लीला कर रहे हैं, बहुत सी लीलाएं की उन्होंने, ब्रिज बनाना, ये करना इत्यादि। तो एक समय लीला कर रहे थे जहां इंद्रजीत लक्ष्मण को शक्ति मार देते हैं, और लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर पड़े हैं, और हनुमान जी जाते हैं संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, तो लीला कर रहे थे तो उन्होंने पहले से सबको बताया था कि देखो मैं ऐसे मूर्छित होकर गिर जाऊंगा, आप लोग सब आसपास आकर रोना, और फिर हनुमान जो हैं वो हनुमान जी जाएंगे, वो बने हैं जो हनुमान, वो जाकर दवाई लेकर आएंगे, और फिर वो दवाई मेरी नाक में डालना, मैं फिर से पुनः जीवित हो जाऊंगा। तो सबने कहा हाँ ठीक है ठीक है, लीला शुरू हो गई, अब सब कर रहे हैं। तो अचानक जब वो समय आया तो नित्यानंद प्रभु एकदम मूर्छित होकर गिर पड़े, और ऐसे गिरे कि मानो सही में मूर्छित हो गए हैं। प्रभुपाद समझाया करते थे एक बार कि एक व्यक्ति रामलीला में ना कार्य कर रहा था, और वो रामलीला करते करते इतना उसमें वो डूब गया कि जब वो दशरथ महाराज का पाग अदा कर रहा था, और जब रामचंद्र जी गए उनको वनवास हुआ, तो उसको दुख में मरना था, वो सही में मर गए। तो नित्यानंद प्रभु ऐसा लगा कि मानो सही में मूर्छित होकर गिर गए हैं। तो जब गिर गए तो जितने बालक वहां खड़े थे वो सब भ्रमित हो गए, ये क्या हुआ ये क्या हुआ, वो सारा भूल गए कि क्या कहा था उन्होंने, और सब खड़े होकर रोने। हनुमान जी भी जो बना था वो भी खड़ा होकर रो रहा है वहां पर कि क्या हो गया क्या हो गया, तो और सब भूल गए, और सारे लोग आ गए क्या हो गया क्या हो गया, और नित्यानंद उठ ही नहीं रहे क्योंकि वो इंतजार कर रहे कि हनुमान जी कब लेकर, हनुमान भी वहां खड़े होकर रो रहे हैं तो वो भी नहीं जा रहे हैं, तो कहाँ से आएगा। फिर किसी को याद आया तो कहा अरे याद है उन्होंने ऐसा कहा था, चलो चलो हनुमान जल्दी जाओ। तो फिर वो हनुमान गए और वो दवाई लेकर आए, सुंघाया, और तब वो उठे। तो ऐसी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं बाल्य काल में उन्होंने की हमें सिखलाने के लिए। हम लोग परिवार करते हैं, संतानें उत्पन्न करते हैं, संतानें बड़ी हो जाती हैं और हम लोग रोते हैं कि हाय हाय कैसी संतान निकली, हम तो इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं और हमारे घर में ऐसी संतान निकली। रोते हो कि नहीं आप लोग? यार आप लोग नहीं रोते होगे, लगता नहीं आपकी शक्ल से। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बचपन में हमने उनको ये सब अवसर ही नहीं दिया, रामायण का, लीलाओं को खेलने का, या उनको प्रेरणा नहीं दी। उनको हमने स्कूल में पढ़ाया क्योंकि हमें लगता था स्कूल बहुत जरूरी है, बच्चा पढ़ेगा नहीं तो ये सब भक्ति वक्ति तो बाद में कर लेगा, वो बाद में कोई नहीं करता। इसीलिए बचपन से एक जिम्मेदारी है। देखिए हम कई बार कहते हैं कि बच्चों को जब आप बड़ा कर रहे हो तो इस तरह से बड़ा करिए कि बच्चे को बड़ा होकर आपके ऊपर गर्व हो, वो आपका कान काटने के लिए नहीं आए। तो कहानी हम लोग सुनते हैं कि एक बच्चा छोटी सी पेंसिल चुरा कर लेकर आया स्कूल से, माँ ने मना नहीं किया, फिर और चीजें लाने लगा, माँ ने मना नहीं किया, धीरे धीरे चोर बना, डाका डाला, हत्याएं की, फांसी की सजा हो गई, और जिस दिन फांसी होनी थी उससे पूछा गया कि कोई इच्छा है, बोले माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ आई तो उसको कहा थोड़ा और पास आओ, कान में कुछ कहना है। उपास आई तो उसने कान काट लिया उसने। अरे माँ चिल्ला रही क्या किया क्या किया। उसने कहा कि अगर जिस दिन पहले दिन मैं पेंसिल चुरा कर लाया था मना किया होता तो आज मुझे फांसी नहीं हो रही होती। सो इस तरह से बच्चों को बड़ा ना कीजिए कि वो आगे चलकर आपको दोष दें, बच्चों को इस तरह से बड़ा कीजिए कि उनको गर्व हो अपने माता पिता पर, जैसे हम लोगों को गर्व है कि माता पिता ने ऐसा कल्चर दिया कि हम भगवान की सेवा में लग सके। तो ये होना चाहिए। तो बच्चों को जैसे परीक्षित महाराज का वर्णन किया गया है, वो गुड़ियाओं से खेलते थे, कौन से, कृष्ण, तो ऐसे हमें कल्चर उन्हें देना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु को वो कल्चर, वो सभ्यता वहां पर दिख रही है कि नित्यानंद प्रभु हमें समझा रहे हैं कि कैसे रहना चाहिए। और फिर नित्यानंद प्रभु थोड़े बड़े हुए और बहुत सुंदर लीला, नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि मैंने बहुत घर में रहकर आनंद ले लिया, लीला ले कर ली, अब मुझे घर का त्याग करना चाहिए क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए आया हूं वो घर पर रहकर पूरा नहीं हुआ, तो अब मुझे घर त्याग करना चाहिए ताकि लोगों का उद्धार कर सकें। देखिए त्याग और वैराग्य ये दरअसल हमारे लिए, हमारे जीवन में बहुत आवश्यक होता है, विशेष करके जब हम दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। बिना त्याग वैराग्य के हम दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर हम आनंद लेना चाहते हैं, हम भोगी हैं, तो फिर हो सकता है थोड़े बहुत लोगों को हम आकर्षित जरूर कर लें, लेकिन उनका उद्धार नहीं कर सकते। उद्धार तभी होगा जब हृदय में वैराग्य है। और इसीलिए नित्यानंद प्रभु ने निर्णय लिया कि अब मुझे घर को त्यागना होगा, ताकि जाकर, चैतन्य महाप्रभु ने भी यही किया, उन्होंने संन्यास क्यों लिया? लोकानाम, लोगों को उनका उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। तो त्याग वैराग्य ये बहुत आवश्यक है, कहना चाहिए कि इसी से एक सभ्य पुरुष की पहचान होती है, उसके आचरण से, उसके त्याग से, उसके कार्यों से, उसके गुणों से। जैसे सोने की पहचान होती है, सोने को परखा जाता है, उसको काट कर, उसको घिस कर, उसको जला कर, उसको उसको ऐसे मार कर, चार प्रकार से किया जाता है, ऐसे ही एक एक सभ्य पुरुष की भी पहचान होती है। तो त्याग बहुत आवश्यक है। कृष्ण को पाना है और हम घर में बैठकर बड़े आनंद में हम सोचेंगे कि सब करते हुए कृष्ण मिले तो मिलने वाले नहीं हैं, छोड़ना होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि सबको घर छोड़ना होगा, इसका अर्थ ये है कि वो जो भोगों से, वो जो सुविधाओं से आ सकती है, उसको छोड़ना। जैसे यहाँ हमने सुना, इतना सुंदर यहाँ हर रोज व्यवस्था होती है, सुबह 4:30 बजे से लेकर ऑनलाइन ये कार्यक्रम चलता है, बड़ी अच्छी सुविधा है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा त्याग होगा, आपको अपनी नींद छोड़नी होगी, अपने अन्य कार्य छोड़ने होंगे, ताकि लाभ मिल सके। तो नित्यानंद प्रभु ने अब निर्णय लिया कि अब मुझे घर छोड़ना है। लेकिन जो उनके माता पिता थे, अदाई पंडित और पद्मावती, वे इतने आसक्त थे कि उन्हें अगर थोड़ा सा उन्हें ऐसा लगा कि अब ये शायद घर छोड़ने वाला है, इसके मन में ऐसा कुछ आ रहा है, तो वे उनको एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते थे। अगर उनकी जो माता थी पद्मावती, अगर एक क्षण के लिए उनको नहीं देखे, तो उनको ऐसे लगता था कि मानो युग बीत गया। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्या इदम जगत सर्वम गोविंद विरहेण मे, तुमको ऐसा लगता था। और उनके पिता भी, और पिता को इतना डर था कि ये छोड़ के चला जाएगा, वो कहीं जाते ही नहीं थे। और अगर कहीं जाते भी थे, मान लीजिए खेत में गए हैं, मंदिर गए हैं, बाजार गए हैं, या कहीं भी, तो वो हमेशा या तो उसको साथ लेकर जाते थे, नहीं तो ऐसे पीछे चलता रहता, घूम घूम के देखते रहते थे, है ना कहीं चला तो नहीं गया। बारम्बार उसको, उनको गले लगाते थे कि कहीं कहीं ये चला ना जाए। हृदय से इतना प्रेम, इतनी आसक्ति उनको थी थराई पंडित के लिए, वो प्राण थे नित्यानंद प्रभु। तो ऐसी आसक्ति हमें कृष्ण में होनी चाहिए। जीवन का उद्देश्य यही है, आसक्ति बढ़ाइए। अनासक्ति की पूर्णता आसक्ति में है। केवल अनासक्त होने से कुछ नहीं होगा, कृष्ण में आसक्ति होनी चाहिए। और ऐसी आसक्ति जो हडाई पंडित में है, जो दशरथ महाराज में है, कि राम चले गए, वो अपने प्राणों को नहीं बनाए रख पाए। ऐसी आसक्ति जो नंद महाराज में है, नंद महाराज कुरुक्षेत्र गए हैं, कृष्ण भी आए हैं वहां पर मथुरा से, द्वारका से आए हैं, राजा की तरह हैं, और सब आए हुए हैं, वसुदेव हैं, अन्य लोग हैं। नंद महाराज की एक ही इच्छा है कि मैं वसुदेव से कृष्ण को मांग लूं, उनको ले जाऊं अपने घर। बहुत समय हो गया, ये तो मथुरा गया था, मथुरा से द्वारका, सब बहुत समय हो गया, तो ले जाने की इच्छा है। बस जिस कार्य के लिए आए थे, वो सूर्य ग्रहण के समय यज्ञ इत्यादि, वो सब हो गया, सब लोग चले गए हैं, कृष्ण वहां है और नंद महाराज भी वहां रुके हुए हैं, वो जा ही नहीं रहे हैं वापस। वो बस ये सोच रहे हैं कि कब मुझे अवसर मिले और जाकर कहूं कि बस ले जाना चाहता हूं, अब बहुत हो गया, अब कृष्ण को दे दीजिए मुझे। और फिर एक दिन वो जाते हैं नंद महाराज वसुदेव से, कहते हैं कि कृष्ण को ले जाना चाहता हूं, कृष्ण को दीजिए। वसुदेव के मुख में शब्द नहीं, क्या कहें, हाँ नहीं कह सकते, ना नहीं कह सकते। हाँ इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कृष्ण का विरह सहन नहीं कर सकते, और ना इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो प्रेम नंद महाराज के हृदय में है उसको देखकर ना बोल नहीं सकते। नंद महाराज हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि उस कृष्ण दे दो मुझे, मैं कृष्ण को ले जाना चाहता हूं। ये प्रेम है, ये आसक्ति है। फिर जब कृष्ण ने देखा कि अब क्या होगा, ना मेरे पिता कुछ कह पा रहे हैं, ना नंद महाराज कुछ कह पा रहे हैं, तो फिर कृष्ण ने ही कुछ ऐसी व्यवस्था की, उन्होंने बात की। खैर आगे पूरी लीला है, बहुत सुंदर। तो ये आसक्ति हमें चाहिए, ये प्रेम हमें चाहिए, कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करके, कृष्ण के नामों का उच्चारण करके, कृष्ण के भक्तों की सेवा करके, हमें वो आसक्ति को उत्पन्न करना है जो हड़ाई पंडित के अंदर। लेकिन खैर नित्यानंद प्रभु को तो जाना ही था, तो कैसे गए और फिर कहाँ कहाँ गए। बहुत सुंदर वर्णन है कि नित्यानंद प्रभु बहुत सुंदर जगहों पर कहाँ कहाँ जाके उन्होंने क्या किया, तो इसका वर्णन कल करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। वुड यू लाइक टू टेक सम क्वेश्चंस? और
या वी कैन टेक सम क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस।
भक्तों से निवेदन है कि अगर किसी का कुछ प्रश्न है आज के प्रसंग
ओके
प्रश्न है तो हैंड रेज कर
यस
होस्ट अनम्यूट कीजिए।
ओके आई विल अनम्यूट देम। शैलेश
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा,
प्रभु जी आपको दंडवत प्रणाम। पहले तो प्रभु
हरे कृष्णा।
जी, भगवान तो भूत भविष्य सब जानते थे ना प्रभु जी, वो तो सब जानते हैं, तो
हाँ जी
फिर इन्होंने इन्होंने हम सबको सच्ची तस्वीर क्यों दी अपनी? ये सब हमारे पास तस्वीर है भगवान की, ये तो जो ऋषि मुनियों ने बताई है उसके हिसाब से बनाई गई है ना, तो उन्होंने हमें सच्ची तस्वीर क्यों नहीं दी कि वो ऐसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं?
ओके सो जो ऋषि मुनियों ने भी बनाया है, उन्होंने भी देखकर ही बनाया है ना। फोटो तो
हाँ
कोई और
प्रभु जी,
लेगा, हम अब वो सेल्फी का समय नहीं था उस समय, तो
हाँ
फोटो किसी और को लेनी होती
हाँ
सो फोटो कौन लेगा, ऋषि मुनि जिन्होंने देखा। क्योंकि देखिए क्या महत्वपूर्ण है, भगवान अपनी अपनी छवि दें या ऋषि मुनि दें। भगवान जब अपनी छवि देंगे तो भगवान कैसे देख रहे हैं अपने आप को, उस वो होगा। लेकिन जब नहीं देंगे वो छवि देंगे कि वो जो प्रेम के अंजनों, प्रेम के आंखों से वो जो कृष्ण को देख रहे हैं, तो वो छवि होगी। तो महत्वपूर्ण क्या है,
जो ऋषि मुनि छूट दिए प्रेम से वही।
ठीक है। तो आपका कोई प्रश्न नहीं है ना। थैंक
नहीं नहीं क्रोच जी, हरे कृष्णा।
यू। हरे कृष्ण, विपिन विलास कृष्ण प्रभु,
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण।
प्रभु जी आपने जो बताया जो संबित संदिनी और हलादिनी, तो उन उनमें बलराम जी और राधा रानी तो बराबर है, लेकिन संदिनी के अधिष्ठाता प्रभु कौन है? आई थिंक
संदिनी के बलराम जी हैं, और इवन संवित के, क्योंकि संवित ज्ञान की शक्ति है, संवित ज्ञान की शक्ति है, संदिनी धारण करने की और अलादिनी आनंद देने की।
तो दोनों
हाँ
के बलराम जी हैं।
जी, ज्ञान देते हैं बलराम जी। थैंक
हरे कृष्ण।
यू। सुख सागर,
हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंड प्रणाम।
हरे
प्रभु जी दो क्वेरीज हैं। एक तो आपने बताया कि अनासक्ति की पूर्णता आसक्ति में है, कृष्ण में आसक्ति में है, तो प्रभु जी पहले क्या आएगा, अनासक्ति के बाद कृष्ण में आसक्ति होगी या कृष्ण में आसक्ति आने से ही अनासक्ति होगी? तो थोड़ा प्रभु जी एक्सप्लेन कीजिए।
अगर अगर हमें कृष्ण का ज्ञान है तो कृष्ण में आसक्ति होने से अनासक्ति होगी, अर्थात हमें कृष्ण का ज्ञान है, सही मार्ग है, सही मार्गदर्शक है, तो फिर कृष्ण में अनासक्ति होने से, कृष्ण में आसक्ति होने से अनासक्ति होगी। लेकिन अगर हमें कृष्ण का ज्ञान नहीं है, हमारे पास सही मार्ग नहीं है, गुरु नहीं है, पथ प्रदर्शक नहीं है, तो फिर अनासक्ति होने से आसक्ति होगी। इसका उदाहरण है, जैसे हम सब हैं, हम सब भक्ति क्यों कर रहे हैं? कृष्ण में हमें, और हम लोग थोड़ा बहुत भौतिक जगत के आकर्षणों को क्यों छोड़ पा रहे हैं? क्योंकि हमने कृष्ण में आसक्ति उत्पन्न की, श्रील प्रभुपाद के उपदेशों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, गुरु के मुख से, श्रवण के माध्यम से, हमने कृष्ण में, कृष्ण नाम में आसक्ति उत्पन्न की। हम लोग तो कोई विरक्त व्यक्ति नहीं थे, वैरागी नहीं थे, लेकिन हमने कृष्ण में आसक्ति उत्पन्न की, और फिर धीरे धीरे जो भौतिक जगत की आसक्तियां थी वो कम। तो ये एक मार्ग है, अगर हमें कृष्ण का ज्ञान है। दूसरा, कृष्ण का ज्ञान नहीं है लेकिन वैराग्य है। जैसे हम लोग देखते हैं कि चार कुमार थे, चार कुमारों में भक्ति पूर्ण रूप से नहीं थी लेकिन वैराग्य था उनमें, तो वो वैराग्य उन्हें भक्ति की ओर ले आया, कृष्ण आसक्ति की ओर। जैसे ही कृष्ण के संपर्क में आए, जैसे ही उन्होंने तुलसी दल जो कृष्ण के चरण कमलों में अर्पण था उसको सूंघा, किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु, भागवत कहता है कि जैसे ही वो वायु, वो मकरंद वायु, तुलसी के मिश्र वायु अंदर गई, वे भक्त हो गए, आसक्ति हो गई कृष्ण। तो दोनों हैं, इसलिए हमारे लिए क्या आवश्यक है? हमारे अंदर वैराग्य तो है नहीं, ये समय भी नहीं है वैराग्य का, इसीलिए कृष्ण से आसक्ति बढ़ानी चाहिए। शास्त्र कहता है, यस्यास्ति भक्तेर भगवत यकिंचन सर्वे गुणस्तत्र समासते सुधा, हराव भक्तस्य कुतो महत गुणा मनोरथेन धावती बही। तो इसीलिए यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन, भक्ति बढ़ाइए, विरक्ति अपने आप आएगी। ठीक है प्रभु।
जी प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। प्रभु जी, और
हाँ जी, और एक प्रश्न है कुछ आपका?
जी प्रभु जी, प्रभु जी आपने लेक्चर में बताया था ज्ञान की नौका में बैठ के भाव में जाना है, तो वो भी प्रभु जी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए।
आप पहले ज्ञान ले लीजिए, नौका में तो आ जाइए, भाव तक पहुंच जाएंगे,
जी प्रभु
बहुत
जी,
बहुत आगे जंप करने की आवश्यकता
नहीं नहीं प्रभु
नहीं
जी, मेरी तो जो रिक्वेस्ट थी, जो आपने जो मतलब लाइन बोली
है।
थी उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए बस प्रभु जी।
इसका कहने का अर्थ ये था कि हम लोग कभी कभी भारत में भक्ति करते भावुकता से, किसी ने कह दिया ये बड़े महात्मा संत है, चलो उधर चल दिए, वो वहां है चल दिए, ऐसे हमारी भक्ति होती है भावुकता से, आंखों में आंसू आ गए। अरे उनका प्रवचन सुन के हमारी आंखों में आंसू आ गए थे। आंखों में आंसू आना कोई भक्ति का लक्षण नहीं है, भावुकता का भी हो सकता है। तो भाव क्या है? लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे गंभीर कठोर हृदय, भाव चाहिए, लेकिन वो भाव ज्ञान के आधार पर। तो जब हमने कहा कि ज्ञान की नाव में बैठकर भाव तक जाना चाहिए, तो इसका अर्थ ये है कि हमें अपरिपक्व अवस्था में वो जो भाव स्तर है, वो जो ऊंचा स्तर है, उसका अनुकरण, नकल करने का अभ्यास नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती आंखों में आंसू नहीं लाने चाहिए। हमें ज्ञान लेना चाहिए, और ज्ञान के आधार पर जब आंखों में आंसू आते हैं तो वो प्रेम का प्राकट्य है, कि हमें ज्ञान है कि कृष्ण कौन है। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए तो उन्होंने देखा कि एक एक मंदिर में एक व्यक्ति है, ब्राह्मण है, गीता को लेकर बैठा और रो रहा। तो पूछा क्या हो गया, क्यों रो रहे? बोले मेरे गुरु ने कहा पढ़ने के लिए लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता, कैसे पढ़ूं गीता? तो रो क्यों रहे? मैं रो इसलिए रहा हूं, ये चित्र को देख रहा हूं कि देखिए जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है कृष्ण, सारी सृष्टि के स्वामी, वो अपने भक्त का रथ चला रहे, सारथी बने, बस ये देख देख के मुझे आंखों में आंसू आ रहे। तो महाप्रभु ने कहा तुमने सही दृष्टि में भगवद गीता समझी। तो वो है कि ज्ञान है कि कौन कृष्ण है और वो कैसे हम पर कृपा करते हैं, उससे जब आंसू आते हैं तो वो प्रेम कहलाता है। इसीलिए हमने कहा कि ज्ञान की नाव में बैठकर भाव तक जाना चाहिए। ठीक है प्रभु,
जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी।
थैंक यू।
हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर रूप से आज इस नित्यानंद त्रयोदशी की जो 3 दिवसीय कथा है उसका शुभारंभ किया। नित्यानंद प्रभु के तत्व से प्रारंभ करके आपने उनकी कुछ बाल्य लीलाएं और कई सारे उदाहरणों से नित्यानंद महाप्रभु की महानता को हमें प्रदर्शित किया, तो आपका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और कल और परसों भी हमारे सभी श्रोताओं के लिए 7:30 AM सुबह 7:30 बजे प्रभु जी इसी कथा का, जैसे आज उन्होंने बताया कि 3 चरणों में ये कथा होगी, तो आप कल भी जुड़ जाइए 7:30 बजे। तो आइए हम लोग प्रभु जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं एक बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करके। अनम्यूट कर सकते हैं सभी लोग।
हरे
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे,
हरे
कृष्णा प्रभु दीन जय।
वंशकृतृभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो अनंतकोटिवैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।
आज का जो ये वीडियो है क्लास है उसका रिकॉर्डिंग हम लोग शेयर कर देंगे प्रभु जी से, तो आप सभी को फॉरवर्ड हो जाएगा। हरे कृष्ण।